सुहासिनी जी इप्सिता के पास गईं और उसके चेहरे को बड़े प्यार से छूते हुए बोलीं, बेटा, आज तुम्हारी कुंवर साहब से पहली मुलाकात है और तुम जानती हो ना, पहला प्रभाव अंतिम प्रभाव होता है। हम चाहते हैं कि तुम कुंवर साहब की नज़रों में बस जाओ, इसलिए हमने तुम्हारे लिए ये ड्रेस मंगवाया है। तुम इसे पहनकर कुंवर साहब से मिलने जाओगी। इप्सिता ने उस बैग की ओर देखा। सुहासिनी जी ने बैग में रखे गाउन को निकाला और उसे इप्सिता के शरीर पर लगाते हुए कहा, परफेक्ट, ये तुम्हारे ऊपर बहुत प्यारा लगेगा, देखो खुद को आईने में। इप्सिता ने अपनी नज़रें उठाकर आईने में देखा। वो सुनहरे रंग का बहुत भारी गाउन था। इप्सिता उस गाउन को देखकर बोली, मम्मी, क्या आप गंभीर हैं? इतना भारी गाउन पहनकर पहली बार मिस्टर अभिमन्यु से मिलना ठीक होगा? सुहासिनी जी ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, बस बेटा, ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है और इसके साथ हमने इसकी मैचिंग ज्वेलरी और नई हील्स भी मंगवाई हैं। अब तुम फटाफट तैयार हो जाओ, तुम्हारी कार तैयार है और तुम्हारे साथ तुम्हारे बॉडीगार्ड संजय भी जाएंगे। इप्सिता ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने धीमी आवाज में कहा, बॉडीगार्ड मेरे साथ जाएगा? क्या मैं किसी अपराधी से मिलने वाली हूँ? सुहासिनी जी ने इप्सिता की बात सुनी और उन्होंने अपना गला साफ करते हुए कहा, इस तरह की बातें नहीं बोलते बेटा, वो कुंवर साहब हैं और जल्द ही उदयपुर के राजमहल के होने वाले राजा साहब भी हैं। चलिए जल्दी से तैयार होकर नीचे आइए, हम आपका नीचे ही इंतजार कर रहे हैं। इप्सिता उस भारी गाउन को देख रही थी और उसके चेहरे पर अजीबोगरीब भाव थे। इसे नोटिस करते हुए सुहासिनी जी एक मिनट के लिए रुकी और उन्होंने पूछा, अगर तुम्हें तैयार होने में कोई परेशानी हो रही है तो क्या हम मेट को अंदर भेजें? इप्सिता ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मम्मी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम बस 10 मिनट में तैयार होकर आते हैं। सुहासिनी जी ने कहा, 10 मिनट में नहीं, तुम आराम से और अच्छे से तैयार हो जाओ, हम चाहते हैं कि कुंवर साहब तुम्हें देखें और देखते ही रह जाएं। इतना बोलकर सुहासिनी जी ने बड़े ही प्यार से इप्सिता के माथे को चूमा और उसके कमरे से बाहर चली गईं। इप्सिता ने गहरी सांस ली और उस गाउन को पहनने के लिए चेंजिंग रूम की ओर बढ़ी। आधे घंटे बाद इप्सिता तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकली। जैसे ही इप्सिता सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, सुहासिनी जी, जो संजय को इप्सिता की सुरक्षा के लिए निर्देश दे रही थी, बोली, संजय, तुम हमारी सबसे भरोसेमंद आदमी हो, इसीलिए हम तुम्हें इप्सिता का बॉडीगार्ड बनाकर भेज रहे हैं। याद रखना, इप्सिता और कुंवर साहब की मुलाकात होटल के प्राइवेट रूम में होने वाली है और तुम उस रूम के बाहर रहोगे। हम नहीं चाहते कि उनकी मुलाकात के बीच कोई भी व्यवधान आए। तुम्हें इप्सिता की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना है। आप हमारी बात समझ रहे हैं ना? संजय, जो बॉडीगार्ड की वर्दी में था, उसने अपना हाथ आगे बांधकर सिर झुकाते हुए कहा, हाँ मैडम, मैं आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बेबी जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। सुहासिनी जी ने सिर हिलाया। तभी संजय की नज़र इप्सिता पर पड़ी, जो अपने गाउन को संभालते हुए हाई हील्स और हीरे का हार पहनकर खुले बालों में हल्की मेकअप में थी, लेकिन वो सुनहरा गाउन इप्सिता पर बहुत जंच रहा था। संजय ने सिर झुकाते हुए कहा, मैडम, बेबी जी आ गई हैं। सुहासिनी जी संजय की बात सुनकर पीछे घूमी। जैसे ही उन्होंने अपनी नज़रें उठाकर इप्सिता को देखा, उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। वो अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए आगे बढ़ी और इप्सिता का हाथ पकड़कर उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, वाह, बहुत खूबसूरत, अब तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी लग रही हो। तुम्हारे ऊपर ये गाउन बहुत जंच रहा है, कुंवर साहब तो तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। इप्सिता सुहासिनी की बात पर कुछ नहीं बोली। तभी सुहासिनी ने अपनी उंगली को आंखों के किनारे लगाया और इप्सिता की गर्दन पर अपनी उंगली छुआते हुए कहा, कहीं तुम्हें हमारी ही नज़र न लग जाए, जाओ कुंवर साहब से मिलो, और हाँ, हमारी बात याद रखना इप्सिता, कुछ भी हो जाए तुम उन्हें नाराज नहीं करोगी। आज सूर्यवंशी राज परिवार की इज्जत की जिम्मेदारी तुम्हारे सिर पर है, सो बिहेव लाइक अ प्रिंसेस, ओके? इप्सिता ने सिर हिलाते हुए कहा, ओके मम्मी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको निराश न करूं। सुहासिनी जी ने इप्सिता की बात को वहीं रोकते हुए कहा, मुझे नहीं, तुम्हें ये बात याद रखनी है कि तुम कुंवर साहब को निराश न करो, अच्छे से उनसे बातचीत करना। इप्सिता ने सिर हिलाया और वो हवेली से बाहर निकलने लगी। संजय ने कार का दरवाजा खोला और इप्सिता चुपचाप कार में बैठ गई। थोड़ी ही देर में कार रुकी और इप्सिता ने खिड़की से बाहर की ओर देखा, जहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, MS रॉयल ग्रैंड। ये एक 7 सितारा होटल था जो 30 मंजिल ऊंचा बना था। दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। इप्सिता ने उस होटल की ओर देखते हुए कहा, ये तो 7 सितारा होटल है, इसका मैंने काफी नाम सुना है। संजय ने आकर कार का दरवाजा खोलते हुए कहा, बेबी जी, ये कुंवर अभिमन्यु राजवंशी के पिताजी के नाम पर रखा गया है। उनका सबसे बड़ा 7 सितारा होटल है और उन्होंने यहीं पर आपको मिलने के लिए बुलाया है, बाहर आइए। इप्सिता संजय की बात सुनकर चुपचाप कार से बाहर निकली और संजय ने कार पार्क करने के लिए सामने खड़े गेटकीपर को चाबी दी और वो सीधे इप्सिता के साथ होटल के अंदर गया। उसने अपना कार्ड गेटकीपर को दिखाया और उसने इप्सिता के सामने झुककर सलाम किया। इप्सिता ने उसे कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि इप्सिता को इन सब चीजों की आदत थी। वो चुपचाप होटल के अंदर गई और वहां अंदर जाते ही जितने भी लोग थे उन सबकी नजरें इप्सिता पर ही टिक गई। संजय उस होटल के मैनेजर के पास गया और उसने जैसे ही उसे अपना कार्ड दिखाया उसने कहा, जी कुंवर साहब की इप्सिता से मुलाकात है। वो मैनेजर इप्सिता के सामने आकर बोला, वेलकम मैम, प्लीज कम दिस वे। इप्सिता उस मैनेजर के साथ जा रही थी और वहीं संजय इप्सिता के पीछे पीछे चल रहा था। मैनेजर इप्सिता और संजय लिफ्ट के सामने जाकर खड़े हुए और जैसे ही लिफ्ट खुली वो मैनेजर उन दोनों के साथ लिफ्ट के अंदर गया और उसने 15वें माले का बटन दबाया। इप्सिता की घबराहट बढ़ रही थी और उसके दिमाग में कई सारे सवाल एक साथ आ रहे थे कि पता नहीं वो अभिमन्यु के साथ कैसे व्यवहार करेगी, अभिमन्यु उसे देखकर किस तरह से प्रतिक्रिया करेगा, वो उससे क्या पूछेगी और भी कई सारे सवाल थे। ये सब सोचते सोचते वे लोग 15वें माले पर आ गए। वो मैनेजर लिफ्ट से बाहर निकलते ही सामने की ओर बढ़ा और एक बड़े से सुनहरे रंग के दरवाजे के बाहर रुका। उसने उस दरवाजे को अपने आईडी कार्ड से खोला और इप्सिता की ओर देखते हुए कहा, मैम प्लीज आप अंदर चलकर थोड़ी देर इंतजार करिए, कुंवर साहब बस आते ही होंगे। इप्सिता ने मैनेजर की बात सुनकर अपने मन में कहा, आते ही होंगे इसका मतलब मिस्टर अभिमन्यु अभी तक नहीं आए हैं, समय की कोई कदर नहीं है। इप्सिता को ऐसे सोचते देखकर संजय ने कहा, बेबी जी क्या सोच रही हैं आप। इप्सिता ने सिर हिलाया और वो चुपचाप उस कमरे के अंदर चली गई और संजय वहीं कमरे के बाहर खड़ा हो गया। जैसे ही इप्सिता उस कमरे के अंदर गई उस कमरे की सारी चीजें सुनहरे रंग की थीं। एक बड़ा सा लिविंग एरिया जिसमें बड़े बड़े सोफे और 8 लोगों के बैठने के लिए डाइनिंग टेबल था। सब कुछ दिखने में काफी ज्यादा शाही लग रहा था। हर तरफ कोने में बड़े बड़े कैंडल स्टैंड जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे और टेबल के बीचों बीच ताजे गुलाब के फूलों से भरा हुआ एक बड़ा सा फूलदान रखा हुआ था। इप्सिता अंदर उस कमरे में आई और उसने चारों तरफ घूरते हुए उस कमरे को देखा। कमरे में उसके अलावा और कोई भी नहीं था। इप्सिता ने गहरी सांस ली और आराम से बीच में रखे हुए सिंगल सोफे पर बैठ गई। क्रमशः